लाडली लाल की। We'll continue with the Bhakti Shatak from Doha number 55.
Jai Radhe Krishna, Radhe, Radhe, Radhe Krishna, Radhe. 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 Jai Radhe.
Muskaat
Radhe Radhe.
सगुण रूप साकार नित वेद विदित विख्यात राधे राधे सगुण रूप साकार नित वेद विदित विख्यात राधे राधे
जय राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे
As I've been doing, I'll explain briefly both in Hindi and in English the meaning of these dohas. This is a direct translation and beautiful interpretation of a Vedic mantra. Nishvasitamasya vedah vikshitamasya panchabhutani smitametasya characharam suptam chasya mahapralayah. In this mantra, Vedas are saying that before the creation of the universe, before Srishti, God looked. Vikshitamasya. What happened when he looked? When he looked, the mayic energy became activated. And that's how Srishti began. He began Srishti by looking towards Maya. So it means before Srishti happened, before the universe began, God was there. And not only as a formless existence, but as Shri Krishna in his personal form. He was there. Otherwise, if he didn't have a form, how could he have looked? So he looked at Maya. Maya was activated. Smitametasya. He gently smiled. Characharam. And all the living beings were sent forth to take birth in this srishti. Another Vedic mantra says that he merely thought, so kamayat bahusyam praja ye yeti sa tapo tapyat sa tapas taptva. Taittiri Upanishad says he simply thought that the world should come into being. It says that he did tapasya. So what kind, tapasya means effort to accomplish something. So what kind of effort did God do in order to cause the universe to come into being? He simply thought. He desired and it was so. That easy for him. But to think or to desire, you need a man. And a man, meaning your mind, that is also only with Supreme God in his personal form. Nirakar Brahm has no man. So he can't think. He can't look. He can't smile. Obviously, if he smiled, he has a face, right? He has a mouth. He has eyes. So it means that the personal form of God was there before the creation of the universe. Vedas make this point very clear, and here Jagadguru Sri Kripaluji Maharaj is stressing on this point because some people in the last couple of centuries have started talking about a philosophy which is not supported by the Vedas, but some people still try to say that God's personal form did not exist before Srishti. Only after Srishti, God took a form and came and visited this world. Or some people even go to the point of saying that human beings imagine the form of God. But since Vedas are eternal and God's form is described in the Vedas at many, many places, including in this mantra which is being translated here, so we know that God's personal form is eternal. इस दोहे में एक वेद मंत्र का अनुवाद है। उस वेद मंत्र में कहा गया है कि सृष्टि से पहले भगवान के श्वास से वेद प्रकट हो गया। वेद अनादि है, लेकिन प्रलय के समय वेद भी लीन हो जाता है भगवान के महोदय में। भगवान के अंदर पूरा संसार लीन हो जाता है और वेद भी लीन हो जाता है। तो जब सृष्टि करने जाते हैं भगवान, तो सृष्टि करने से पहले श्वास छोड़ते समय वेद को प्रकट कर देते हैं। जा की सहज श्वास श्रुति चारी। रामायण भी कहती है कि भगवान के श्वास से वेद का प्राकट्य हो गया। उसके बाद भगवान ने क्या किया? वीक्षितमस्य, उन्होंने देखा माया की ओर, और देखते ही माया में हलचल हो गया, माया जाग गई और सृष्टि करने लगी। मतलब भगवान के प्रेरणा से, भगवान की शक्ति पाकर माया ने सृष्टि की, संसार प्रकट हो गया भगवान की कृपा से। तो उन्होंने देखा है, उसका मतलब है देखो, जब श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं भगवान, उसका मतलब है कि उनकी छाती तो होनी चाहिए, उनका मुंह होना चाहिए, तो उसका मतलब साकार हैं। तो सृष्टि से पहले भगवान का सगुण साकार रूप है। कुछ भोले भाले लोग समझते हैं कि भगवान सृष्टि से पहले नहीं थे, केवल निराकार ब्रह्म थे, और या तो भगवान बाद में प्रकट हुए अपने सगुण साकार रूप में, या सगुण साकार भगवान होता ही नहीं, लोगों ने कल्पना करके उनको बनाया। तो इस वेद मंत्र से प्रतीत होता है कि ये ऐसा नहीं है कि सृष्टि से पहले ही भगवान ने श्वास लिया और छोड़ा। उन्होंने देखा है तो उनकी आंख भी होनी चाहिए। उन्होंने मुस्कुराया, उससे क्या हुआ, चराचर जीव प्रकट हो गए। तो मुस्कुराने के लिए एक मुंह चाहिए, तो साकार हैं। और अंत में सुप्तम चास्य महाप्रलयः, अपने श्वास को रोक देते हैं और सारा संसार का लय प्रलय हो जाता है भगवान के अंदर। तो इस वेद मंत्र, इस भक्ति शतक के दोहे के अनुसार प्रतीत है कि भगवान का सगुण साकार रूप है सृष्टि से पहले ही। इसके आगे दोहे में बताया है भगवान के अवतार के बारे में। दोहा संख्या 56 में बताया गया कि भगवान अवतार भी लेते हैं। देखिए, सृष्टि से पहले भगवान का रूप होता है, फिर सृष्टि करते हैं और इस सृष्टि में भी सब कहीं व्याप्त हो जाते हैं, सर्वव्यापक बन जाते हैं भगवान। तो उसका मतलब है कि ये पूरा संसार, ये सारा संसार उन्हीं का रूप है। तदात्मानम स्वयमकुरुत, तैतरीयोपनिषद में लिखा है कि ये संसार भगवान का ही रूप है, भगवान के बिना ये संसार हो नहीं सकता है। भगवान उनका इस संसार का आधार है। तो भगवान ने स्वयं इस संसार का रूप धारण किया और फिर उसके बाद उन्होंने अवतार लिया। उसका मतलब है फिर से प्रकट हो गए हैं इस संसार में। तो भगवान थे अपने दिव्य लोक में, फिर भगवान ने संसार को प्रकट कर दिया, भगवान स्वयं इस संसार का रूप बन गए। और उसके बाद भी इस संसार में जो भगवान का रूप है, उस भगवान रूपी संसार में उन्होंने एक और रूप धारण किया है, अवतार लिया, यहां आए और अपनी लीलाओं प्रकट की। तो इसमें प्रश्न है कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। कारण हरि अवतार को कृपा अकारण जान, अपर जिते कारण कहे तिन ही गौण करिमान। रामायण में लिखा है कि हरि अवतार जे ही ते हे तुझे ही होई, इदमित्थम कही जात न सोई। श्री कृष्ण के अवतार के कारण इतने हैं कि कोई गिन भी नहीं सकता है, कोई बता भी नहीं सकता है, कोई लिख भी नहीं सकता है, अनंत कारण हैं। लेकिन यहां लिखा है कि एक कारण प्रमुख है, बाकी सारे कारण गौण हैं, सेकेंडरी हैं। तो वो कौन सा कारण है जो प्रमुख है? भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम विद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन। भागवतम में लिखा है कि भगवान हमारे लिए आते हैं कि ये संसारी जीव इतने आसक्त हैं इस संसार में कि उनको कुछ ऐसी चीज देनी चाहिए जो दिव्य भी हो लेकिन उनके मन को आकर्षित भी कर सके। ये संसारी लोग क्या पसंद करते हैं? सुंदर रूप देखना, प्यारी आवाज सुनना, अच्छा खाना चखना, ये सब हम चाहते हैं। पांचों इंद्रियों से हम इस संसार का अनुभव करना चाहते हैं। तो भगवान ने सोचा है कि मैं ही जाऊं संसार में, और वैसे वे उस समय मुझे भले ही नहीं देखेंगे और देखें भी तो पहचान नहीं पाएंगे, उससे मतलब नहीं। मैं जाऊंगा और अपनी सारी लीलाओं जो इतने मधुर हैं कि शिव जी का हृदय हर लेते हैं, ऐसी लीलाओं को प्रकट कर दूंगा और संसारी जीव जो ऐसी चीजें चाहते हैं वो उन लीलाओं से आकर्षित हो जाएंगे तो मेरी ओर चलने लगेंगे। उस लक्ष्य रख कर भगवान इस संसार में आते हैं। इसलिए कहा जाता है कि उनका एक ही कारण है सब सारे कर्म के लिए, मुख्यम तस्य ही कारुण्यम, शांडिल्य भक्ति सूत्र। उनका अकारण करुण यही प्रमुख कारण है, बाकी सारे कारण गौण हैं, वो मेन नहीं है। देखिए हर एक कर्म करने के लिए एक प्रयोजन होना जरूरी है। प्रयोजन मनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते, दर्शन शास्त्र कहता है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी कर्म नहीं कर सकता है प्रयोजन के बिना। तो भगवान का कोई ना कोई प्रयोजन होगा, इस सृष्टि इतना बड़ा काम किया उन्होंने, सृष्टि प्रकट की, फिर अवतार लिया है इस सृष्टि में, तो उनका प्रयोजन क्या था? जीवों पर अनुग्रह, जीवों पर कृपा। जैसे मैंने बताया कि सारे जीव आनंद चाहते हैं और भगवान ही आनंद है, लेकिन जीवों का मन इस संसार में आसक्त हो चुका है, बहुत गहरी आसक्ति है अनंत जन्मों के कारण। अनंत जन्मों से हम इस संसार के पीछे भाग रहे हैं, हम इस संसार को ही आनंद स्वरूप मानकर इस संसार में आनंद ढूंढ रहे हैं। इसके कारण हमारा मन टोटली आसक्त हो गया है इस संसार में। तो हमको अपनी तरफ खींचने के लिए भगवान अवतार लेते हैं और लीलाएं प्रकट कर देते हैं। तो ये बताया है इसमें कि उनके अनंत कारण हो सकते हैं अवतार लेने के लिए, लेकिन एक ही प्रमुख है। So in this doha, the next one, number 56, it's explained that although God may have uncountable reasons for taking avatar, there's one which is main and all the others would be secondary. The one which is main is his causeless grace on the souls. He has no other reason to do anything. In our scriptures, it is said at places like, Lokavattu Leela Kaivalyam, that God comes in this world to play or to enjoy. That's the literal meaning. Brahma Sutra says. So, this can't be the pramukh reason. This can't be the main reason. Gita says, whenever Shri Krishna sees that the dharma in this world is fading and adharma is rising and that saints need protecting and there are some demons that need to be killed, then he comes in this world. Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyutthanam dharmasya tadatmanam srijamyaham. He comes from time to time on a regular basis to perform many acts. So these reasons which are described that, well, he needs to come to kill the demons, that can't be the main reason, right? Because he could have killed any demon he wanted without taking avatar on this earth. He could have just like he thought and the universe came into being, seeing as he sits in the heart of every living being, he could have just thought and the demon would have had a heart attack. There's no need to take avatar, grow up, learn to walk, learn to shoot bow and arrow, go on a huge march all the way to South India, searching for Sitaji, take the help of the Banar Sena to build the bridge across to Sri Lanka, and then fight a war against Ravan. See, all of that is Leela. The Leela was the main thing. He wanted to reveal those Leelas so we would have a way to be attracted to him. Otherwise, if God didn't do any Leelas and all we knew is that he's the greatest, he's the supreme, that's fine for us to respect him and worship him, but in order to love him, we need to have some Leelas where we hear about his beautiful form and where his personality is revealed in order to attract our heart. So you can say that his coming down to kill demons or protect saints, which he can also do without taking avatar, by killing the demons, he would automatically be protecting the saints, and then the saints would automatically establish the dharma. So dharma sansthapanarthaya, also that can't be the main reason. So the main reason is just to come and do leelas. All of the other reasons are secondary. They're incidental. But the main thing is to come and reveal those leelas for us. And that is his akaran karun. He has no reason to do anything for him, his own self. Name parthasti kartavyam trishulokeshu kinchan nanavaptam avaptavyam varta eva cha karmani. Gita. Shri Krishna says, Arjun, I have no need to do anything. I have nothing binding me to perform any action. There is nothing I need to attain. And yet I still do all of these actions. I do srishti. I come on earth. I take avatar. So why does he do all of that? He doesn't need to, but he does out of the kindness of his heart. So that's what's described in this doha. And there's more about the reasons for God's avatar in the dohas to come.
Jai Radhe Krishna, Radhe, Radhe, Radhe Krishna, Radhe. Jai Radhe Krishna, Radhe, Radhe, Radhe Krishna, Radhe. Jai Radhe Krishna, Radhe, Radhe, Radhe Krishna, Radhe. J Jai Radhe Krishna Radhe 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 Krishna Radhe Jai Radhe Jai Radhe 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 Jai Radhe Jai Radhe Karan Hari Avatar Ko Kripa Karan Jan Radhe Radhe Karan Hari Avatar Ko Kripa Karan Jan Radhe Radhe Aparjite karan kahe tinahi gaan kariman radhe radhe Jai Radhe Krishna Radhe 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 Krishna 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 Radhe
In the next Doha, Doha number 57, more is explained about the reasons behind not only God's actions, but the actions of God-realized saints.
Hari Hari Jan ke karya ko karan kachu na lakhai, par upakar swabhav vash karat karya jagai.
Both God and the saints are self-complacent. It means that they're fully happy in and of themselves. They don't need anything from any other person. They don't need anything from any other thing to make them happy. So why would God come here to this world? Why would a God-realized saint come here to this world, or after becoming God-realized, decide to stay here in this world? There's no personal reason that they could have. There's only one thing. They feel happy seeing others happy. Seeing us attain divine bliss gives God and saints even more happiness. So that's what they want.
Par upakar vachan man kaya sant sahaj swabhav khagraya.
The Ramayana tells us that it's just the nature, it's the natural nature, sahaj swabhav. It's the natural nature of saints and of course of God to want to help the souls with every breath, with every word, with every action that they take. They have no reason for doing anything else. So we shouldn't look at their actions. Karana kachu nalakhai. We should just know this basic point, that that's the one thing motivating a saint or God to do anything, because they have no personal desires remaining. All of their desires are naturally fulfilled since they've attained divine bliss, and God himself is the form of divine bliss. So knowing this, why would we ever look at an action of God or of a saint and ask the question, why? That's what this Doha means. If we're, you know, knowing this, if someone doesn't know it, okay, it can be expected that they may ask such questions. But knowing and understanding this basic point, why would we ever question the reasons behind God's actions or a saint's actions? Now I'll explain briefly in Hindi. इस दोहे में बताया गया है कि क्योंकि भगवान और संत दोनों आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम हैं इसलिए उनका कोई स्वार्थ नहीं रहा है हम लोग स्वार्थ रख कर कर्म करते हैं हमारा स्वार्थ एक ही है कि हमको आनंद चाहिए तो उस आनंद प्राप्त करने के लिए हम सारे अपने कर्म करते हैं लेकिन भगवान तो आनंद स्वरूप हैं और महापुरुषों ने भगवान को प्राप्त किया है यानी आनंद को प्राप्त किया है तो उनका कोई न कर्तव्य बाकी है न कोई इच्छा बाकी है न कोई कामना रही है कुछ नहीं तो उनको ऐसा रहना चाहिए कि कुछ न करे संत को और भगवान को कुछ नहीं करना चाहिए जब उनका कोई प्रयोजन नहीं है उनकी कोई कामना नहीं है तो कुछ क्यों करें जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज हमेशा कहते थे कि
यदि संत या भगवान खड़े हो जाएं, तो हम पूछ सकते हैं, आप क्यों खड़े हो गए? आपको नहीं खड़ा होना चाहिए, आपको ऐसे लकड़ी की तरह लेटा रहना चाहिए, आनंद मग्न। आप क्यों खड़े हो गए? अच्छा, मैं बैठ जाऊं। क्यों बैठे? हम लोग खड़े खड़े होके थक जाते हैं ना, तो फिर बैठ जाते हैं। आप तो थक नहीं जाते हैं, आप भगवान हैं, आप तो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, आप क्यों बैठे? अच्छा, मैं लेटूं। लेटा क्यों? हम लोग थक होकर सो जाते हैं, सोचते हैं कि बहुत थक गए हैं, अब सोने का आनंद लूं। आप क्यों सोए? आप क्यों उठे? आपने आंखें क्यों खोली? हर जगह हम पूछ सकते हैं, लेकिन यदि हमको ये ज्ञान है कि उनका हर एक कार्य हमारे लिए है, वही और कोई कारण नहीं है, जो भी करते हैं हमारे ऊपर कृपा करने के लिए, हमको प्रेरणा देने के लिए, या हमको मतलब भगवान की ओर प्रेरित करने के लिए, हमको सिखाने के लिए, उदाहरण स्थापित करने के लिए, वो सब हमारे लिए करते हैं। तो जब हम ये पॉइंट जानते हैं और मानते हैं, तो फिर क्यों पूछेंगे? जब हमने ये माना है, जाना है, तो अब कभी पूछना गलत है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, अमुक संत ने ऐसा क्यों किया, पूछना ही गलत है, क्योंकि जवाब हमारे पास है, ऑलरेडी है हमारे पास। हम जानते हैं हमारे लिए किया है, हमारे लिए किया है, जो भी किया है जीवों के लिए, जीवों पर अनुग्रह करने के लिए किया है। आगे वाले दोहे में और भी वर्णन है इस विषय का, तो आगे हम बताएंगे। जय राधे कृष्ण, राधे 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 कृष्ण राधे, 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 जय राधे, जय राधे राधे, कृष्ण जय कृष्ण, जय कृष्ण हरि हरि, जन के कार्य को कारण कछु न लखाय राधे,
पर उपकार स्वभाववश करत कार्य जग आय राधे राधे जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे पर उपकार स्वभाववश करत कार्य जग आय राधे राधे आवश करत कार्य जय राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे 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 जय राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे
In the next two dohas, आगे दो दोहे में श्री कृपालु जी महाराज बताते हैं कि हरि हरि जन के आचरण मायामय मत जान उनके चरित्र अलौकिक माया क्रीड़ामान और हरि हरि जन के अटपटे चरित्र न बुध लखी पाए अति विचित्र गति दुहन की रसी कहीं समुझी सकाए यदि हम समझ गए कि उनके हरेक कार्य का कारण वही है दूसरों पर अनुग्रह करना तो फिर पूछने की जरूरत नहीं है बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है कि भगवान ऐसे क्यों कर रहे हैं संत ऐसे क्यों कर रहे हैं पूछने की जरूरत नहीं है देखने की जरूरत नहीं है उस ओर लेकिन कभी कभी बुद्धि लग जाती है हमारा मन ऐसा है हम सब की ओर देखते रहते हैं और बुद्धि लगाते हैं कि ये आदमी ऐसा क्यों कर रहा है तो भगवान की ओर भी हम देखकर ऐसे पूछते हैं सोचते हैं हमारी आदत है जबकि नहीं करना चाहिए भगवान के लिए और संतों के लिए, लेकिन हम करते हैं। तो श्री कृपालु जी महाराज और समझाते हैं हमको कि भगवान और महापुरुष कैसे कार्य करते हैं। उनके पास एक शक्ति है, योग माया शक्ति, उसका दूसरा नाम है स्वरूप शक्ति, भगवान का अंतरंग, भगवान की अंतरंगा शक्ति है, सबसे पर्सनल पावर। उस योग माया शक्ति से भगवान अघटित घटना पटीयसी, जो भी हमारे लिए असंभव लगता है भगवान के लिए संभव है। कर तुम कर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ, इस योग माया शक्ति के द्वारा भगवान कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं, ना कर सकते हैं, जो भी मन में आए कर सकते हैं, लेकिन हमेशा अपनी दिव्य स्थिति में रहकर। भगवान इस संसार में आते हैं और उस समय हमको लगता है कि उनको भूख लगी है, इसलिए माखन की चोरी कर रहे हैं। उनको अकेलापन अच्छा नहीं लगता है, इसलिए अपने ग्वाल बालों के साथ खेलने जाते हैं। हम बुद्धि लगाकर गलत दिशा में जाते हैं। हम संत को देखते हैं और सोचते हैं कि ये संत किसी को डांट रहा है, उनमें गुस्सा है शायद। दुर्वासा मुनि किसी को श्राप दे रहे हैं, बड़े क्रोधी हैं। ये सब गलत हम सोच रहे हैं, एकदम गलत। संत और भगवान ऐसे कर्म कर सकते हैं कि लगता है कि वे भी मायावश में हैं, जैसे हम लोग तो क्रोधवश वो क्रोध कर रहे हैं, कामनाओं के वश में होकर कोई भी कर्म कर रहे हैं हमारे जैसे, क्योंकि हम नहीं समझ सकते हैं कि प्रहलाद ने भगवत प्राप्ति के बाद ब्याह किया है और बच्चों को पैदा किया है, लेकिन उनमें कामनाएं नहीं है, कोई संसारी कामना नहीं है, न काम न क्रोध न लोभ, लेकिन युद्ध कर भी रहे हैं, ब्याह भी कर रहे हैं, सारे संसारी कर्म कर रहे हैं हमारे लोगों के जैसे, हम लोगों के जैसे कर रहे हैं, लेकिन वे किस शक्ति से कर रहे हैं? योग माया शक्ति से कर रहे हैं, और हम माया से करते हैं, माया के वश में हम लोग करते हैं, और भगवान योग माया के बल से करते हैं। तो हम लोग बंधे हुए हैं इस माया में, और जब तक माया रहेगी तब तक काम क्रोध लोभ सब रहेंगे, और जैसे ही हम माया को पार करेंगे, वो जितने माया के सेनापति हैं, काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष सब कुछ भाग जाएंगे। तो भगवान मायातीत हैं, मायाधीश हैं, महापुरुष मायातीत हैं, उनमें कोई माया का विकार्य नहीं है, लेकिन लगता है हमको। तो इसलिए महाराज जी लिख रहे हैं कि माया मय मत जान, उनके कर्मों को ऐसी बुद्धि मत लाओ। भागवतम में लिखा है कि यदि आपने भगवान को या किसी महापुरुष को देखा है और उनमें और उनके कर्मों में मनुष्य वाली बुद्धि लाई है और सोचने लगे कि वो मेरे जैसे हैं, उनमें सारे दोष हैं जैसे मुझ में, इसलिए ये ऐसे कर रहे हैं, तो फिर हमारा सारा ज्ञान व्यर्थ हो गया। जैसे हाथी नहा लेता है और उसके बाद मिट्टी में ऐसे रोलिंग करके पूरा गंदा हो जाता है, तो जैसे हम कहते हैं गधे का स्नान, तो भागवत में कहा है हाथी का के स्नान के बराबर हमारा ज्ञान ऐसा व्यर्थ गया। इतना तत्व ज्ञान प्राप्त करने के बाद यदि हम अपनी बुद्धि लगा के नामापराध कमाते हैं तो फिर सब जीरो बटे सौ हो गया। सो इन दिस दोहा इट्स एक्सप्लेन्ड दैट गॉड एंड गॉड रियलाइज्ड सेंट्स परफॉर्म ऑल ऑफ देयर एक्शंस थ्रू द पावर ऑफ योग माया, व्हिच इज गॉड्स पर्सनल पावर, द सुप्रीम पावर। Whereas we all the souls under Maya, we all perform our actions under the effect of Maya. So there are two Mayas, one Maya, one Yoga Maya. So Yoga Maya means, Yoga means to keep joined. So God and His saints always have their mind and their self established in their divine state, but they can do Mayic looking actions. Yoga Maya. And we just have Maya. So our actions are motivated by desire, anger, jealousy, greed, etc. But God and saints' actions are never motivated by such things. So we should never apply our intellect and try to judge a saint's actions or God's actions. One time, gopis were performing a particular vrat, and in order to finish that vrat, in order to break their fast, they were supposed to offer a meal to a Mahapurush. So they asked Shri Krishna, whom can we offer a meal to? He said, you can offer it to my Guruji, Durvasa Muni. So gopis said, but Durvasa Muni is on the other side of Yamuna, and it's the rainy season, Yamuna is flooding, how are we going to get to the other side? Shri Krishna said, just go to the bank of Yamuna and say, if Shri Krishna is Akhanda Brahmachari, then let me please go. Akhanda Brahmachari meaning someone who is perfectly chaste, who is perfectly celibate, not only in deeds but in thoughts. So Shri Krishna did such leelas that would make someone think that He had desires and anger and all these things. So from outward impressions, you would get the impression Shri Krishna is not a brahmachari. But, of course, he's a perfect brahmachari. So the gopis kind of smiled to each other, thinking that, how can it be so? But we'll humor him. We'll go to the bank of Yamuna and ask her to let us pass if he's a perfect brahmachari. So they went and asked, and Yamuna gave way, and they crossed. And they had so many dishes of food that they went and offered to Durvasa Ji, and he ate the whole thing. It was a huge feast, and he ate the whole thing himself. The gopis were amazed. Khaye ja rahe hain, khaye ja rahe hain. So when he was all done, then the gopis said, now we have to, Guruji, we have to cross Yamuna again. How are we going to do it? So he said, just tell Yamuna that if Durvasa Muni has never eaten anything other than grass, let us pass. So the gopis again, they're thinking, jaise chela, vaise guru. We just saw him eat all of that. How is it possible that Yamuna ji is going to let us go by saying that Durvasa Muni has only eaten grass? But when they went there, she again gave way because Durvasa Muni's attachment was not in any of that food. So as far as his actual karma was concerned, he wasn't eating anything because he wasn't attached to it. So they crossed back over, and then they went to Shri Krishna and asked, what is this? Both situations are beyond our intellect. So then Shri Krishna explained to them that both I and Durvasa Muni perform all of our actions through the power of Yogamaya. So it appears to you that we are mayic, but in fact we aren't. So here Shri Maharaji says, Unke charita alaukik. All of their actions are divine because their motivation is divine and they lack any kind of material faults or desires of any kind. So it's maya krida man. We should understand that every action of God and saints is done through, here this second maya means yoga maya. Maya krida man means understand that it's through the effect of yoga maya. Sometimes we use, just in short, we say maya for yoga maya. So all their actions are performed through yoga maya. And there's no hope of anyone who's not at that level understanding any of their actions. So, Hari Hari Jan ke atapate charit na buddha lakhi pai. Even great knowledgeable people, scholars, even jnani, saints who have attained formless God, they cannot understand the actions of the personal form of God, Shri Krishna, or the saints who have attained Him. Ati vichitra gati duhun ki rasika hi samujhi sakai. Only a rasik saint who has attained Shri Krishna can understand His actions or the actions of His saints, because His actions are very difficult to understand unless you have His mind, unless you have attained His state of blissfulness and His divine knowledge. Only then can you understand His actions. So for us, at our level, it would be best for us just not to even apply our mind in that direction. When someone asks the question, why did Ram tell Sita to go back in the fire? Why did Ram test Sita? Why did Ram send Sita to the jungle? Why? Every chance we get, we ask why. So with this knowledge, why should we think we would have any chance of understanding God's actions or the reasons behind His actions? Well, you think Ram just had a whim and felt like sending Sita to the forest? He must have had a divine reason. Sita and Ram are one and the same. So although Sita may be acting in the Leela that, oh, I'm separated from Ram, when is Ram going to come to me? Ram is Sita and Sita is Ram. So why ask why? The whole thing is beyond our intellect. Just take the ras of that Leela. He did those Leelas to attract our mind, or to give different people with different nature in their mind, because everybody's different. So He performed all kinds of different Leelas to attract the minds of all the different people, depending on what type of Leela they would be attracted to. That's all we need to understand. Whatever are the divine reasons behind it, we'll understand when we get to that level. Or maybe when we rise a little higher in our devotion, we'll be able to understand some of it. To is akhri dohe mein Jagadguru Shri Kripaluji Maharaj ne samjhaya ki keval rasik log rasikon ke rahasya samajh sakte hain, aur rasik shiromani Bhagwan Shri Krishna ka rahasya samajh sakte hain, isliye unke atpate leelaon ko dekhkar humko apni buddhi nahi lagani chahiye, bas ye samjhe rehna कि उनका जो भी कार्य है वो जीवों पर कृपा करने के लिए है, जो भी लीला कर रहे हैं हमारे ऊपर कृपा करने के लिए ही है, और उस नाम अपराध से हम बच सकते हैं. नाम अपराध सबसे बुरा कर्म माना जाता है. तामस कर्म से भी नीचा है वो नामापराध. नामापराध माने भगवान या भगवान के महापुरुषों के प्रति अपराध.
बाकी जितने अपराध हैं वो सब मायिक जीवों के प्रति हम करते हैं ना, लेकिन हर एक अपराध का लेवल होता है और उस लेवल उसमें भगवान देखते हैं कि किस किसके प्रति अपराध हुआ है। तो जब भगवान के प्रति हम अपराध कर रहे हैं बुद्धि लगाने के कारण, या संत महापुरुषों के प्रति हम अपराध कर रहे हैं, वो सबसे खतरनाक कर्म है। उसके कारण हमारा हृदय बहुत जल्दी गंदा हो जाता है और भगवान की कृपा जो पहले भी हमको मिल रही थी अपने हृदय में वो भी कट जाएगा। हम अंदर से ही कनेक्शन कट रहे हैं उस नाम अपराध करने से, तो हमको उससे बचना है कि नाम अपराध न करें, अपनी बुद्धि न लगाएं भगवान की लीलाओं में, बस उस लीला का ध्यान करना है और उससे मन की शुद्धि करो, वो भक्ति है। बुद्धि लगाना भक्ति नहीं है। हाँ, कुछ चीजों में लगानी चाहिए, जैसे समझने के लिए कि जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, हमारा उनसे क्या संबंध है, लेकिन लीलाओं में लगाना गलत है। तो ऐसा इस दोहे में समझाया गया है। अब हम ये आखिरी दो दोहे गाएंगे, फ्रॉम 58 टू 59 विल सिंग नाउ विद द टाइम वी हैव लेफ्ट।
जय राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे, 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 जय राधे जय राधे। कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण हरि हरि जन के आचरण मायामय मत जान राधे राधे, उनके चरित अलौकिक माया क्रीड़ा मान राधे राधे, हरि हरि जन के अट पटे चरित न बुध लखी पाय राधे राधे अति विचित्र गति दुहुन की रसी कहीं समुझी सकाय राधे राधे दुहुन की रसी कहीं समुझी सकाय राधे जय राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण 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 राधे
अलबेली सरकार की श्रीमत सद्गुरु सरकार की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे